तो लर्नर्स, आज हम जो चर्चा है वो डेप्रिसिएशन पे है हमारी। तो डेप्रिसिएशन की जब हम बात करते हैं, इससे पहले भी हमने अपने जो पहले के जो कार्यक्रम हैं उनमें जो है काफ़ी चीज़ों पे बात करी है, जैसे कि जर्नल पे बात करी है, कैसे एंट्रीज करनी है उन पे बात करी है, फिर किस तरह से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं जर्नलाइजिंग के बाद, और उसके बाद किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है, इन सब चीज़ों पे हम ऑलरेडी चर्चा कई बार कर चुके हैं। बट आज जो हम चर्चा करेंगे वो डेप्रिसिएशन पे है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एसेट्स जानते हैं क्या होता है, हम ये भी जानते हैं कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि एसेट्स को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं करंट एसेट्स, जिसको कि हम कैश, डेटर्स या जो हमारे कस्टमर बैलेंसेस होते हैं, स्टॉक होता है मटेरियल का, गुड का, वो होते हैं, और या फिर हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर हैं, फिक्सचर्स हैं, मशीनरी है, प्लांट है, या फिर मोटर व्हीकल्स हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इनको हम कई बार लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। तो इनको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलते हैं। अगर हम ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो इनकी वैल्यू जो है वो समय के साथ साथ कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे साल दर साल निकलते जाते हैं इन एसेट्स को यूज़ करते करते इनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फिक्स्ड एसेट्स जो हैं अपनी उपयोगिता की अगर हम बात करें तो उनकी वो कम हो जाती है, और कई बार ये कम इनकी उपयोगिता जो है ज़रूरी नहीं है कि यूज़ करने की वजह से ही कम हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई या फिर कुछ फैशन चेंज हो गया, तभी भी इनकी उपयोगिता कम हो जाती है। तो जनरली होता क्या है कि इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी यूज़फुल लाइफ तब ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो एक फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट होती है उसको हम उसकी यूज़फुल लाइफ में एलोकेट करते हैं। तो जब हम हर साल उसकी यूज़फुल लाइफ, जो उसकी जो कॉस्ट होती है फिक्स एसेट की, उसको उसकी यूज़फुल लाइफ जो भी हम मानते हैं उसमें हम उसको एलोकेट कहते हैं, तो हर ईयर जो हम कॉस्ट एलोकेट करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि एक ऑफिस चेयर को परचेज किया गया 2,500 रुपये में, और ये माना गया कि ये 10 साल तक चलेगी, उसके बाद इसको स्क्रैप किया जा सकता है। तो यूज़फुल लाइफ अगर हम चेयर की बात करें कि चेयर की यूज़फुल लाइफ क्या है, तो वो 10 साल है, और ये 2,500 रुपये को, इसका मतलब है कि हमें 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 साल की बात करें तो हर साल हमें 250 रुपये इसकी लिए पेमेंट करना होगा, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि जो एसेट का कॉस्ट होगा उसको उसकी यूज़फुल लाइफ में एलोकेट कर देना चाहिए, तो इसलिए वो 250 रुपये होगा, और 250 रुपये जो है वो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। तो अगर हम ये कहें कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन जो है एक एक्सपेंस है जिसको चार्ज किया जाता है हर साल, जिससे कि हमारा जो एसेट है उसकी वैल्यू में कमी दिखाई जाती है। और वो कमी किस वजह से होती है? नॉर्मल वियर एंड टियर से भी हो सकती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो एक एसेट का नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, उसके बाद कई बार एसेट पुराने हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो ऑब्सोलीट क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाते हैं, या फिर फैशन में कुछ चेंज आया, या कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर के टेस्ट में या प्रेफरेंसेस में चेंज आए, या फिर कई बार कुछ मार्केट कंडीशंस भी होती हैं जो बदल जाती हैं। तो अब हम इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन है, जिनके बारे में हमने बात करी कि नॉर्मल वियर एंड टियर हो सकता है या ऑब्सोलेसेंस हो सकती है, और जिसके हमने कई सारे कारण भी बताए। तो सबसे पहले अगर हम कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें कि डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर से कैसे होता है, तो सबसे पहले तो इसके भी दो भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं, कि पहला तो है ड्यू टू यूसेज और दूसरा है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। तो हर एक, अगर हम ड्यू टू यूसेज की बात करें तो हर एक एसेट की एक लाइफ होती है, जिस लाइफ के लिए एसेट जो है वो रन करता है या फिर सर्विसेज देता है। जैसे जैसे हम इस एसेट को यूज़ करते हैं उसकी जो यूज़ वर्थ होती है या जो उसकी वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो अगर हम एक बाइसिकल खरीदते हैं, अगर हम एक साइकिल खरीदते हैं, तो जब वो नई नई होती है तो हम देखते हैं कि वो बहुत स्मूथली चलती है, बहुत अच्छी चलती है और बहुत एफिशिएंट हो सक जाती होती है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं समय के साथ साथ उसकी जो एफिशिएंसी होती है या जो उसकी फंक्शनिंग होती है वो कम होती जाती है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रेगुलरली वो जो है चल रही है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसकी एफिशिएंसी में कमी आती रहती है। उसी के साथ साथ अगर हम ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम की बात करें, तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, कई बार नेचर की वजह से या फिर विंड है या फिर सूरज की किरणें हैं, धूप है या बरसात है, इनकी वजह से भी चीज़ों में फिजिकल डिटोरिएशन हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि अगर हम अपनी छत पे या फिर बालकनी में कुछ, अगर घर में रखने की जगह नहीं है, जैसे कई बार ऐसा होता है अगर घर में कोई चेयर रखने की जगह नहीं है तो उसको आपने बालकनी में रख दिया या फिर छत पे कोई रख दिया चेयर या सोफ़ा, तो हम देखते हैं कि 3-4 महीने के बाद वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस पर धूप पड़ती है, उस पर बारिश पड़ती है, उस पर धूल पड़ती है, तो इससे उसका रंग भी उड़ जाता है, वो अपने आप फट भी जाता है और कपड़ा भी हम देखें तो अपने आप एक तरह से क्रैक होने लगता है। तो ये हम देखते हैं कि जो पैसेज ऑफ टाइम है, चाहे हम गुड्स को यूज़ करें या ना करें, लेकिन अगर टाइम के साथ भी हम उनको ऐसे ही पड़ा छोड़ देते हैं, जैसे कि फर्नीचर का हमने एग्जाम्पल दिया, इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो चीज़ अपने आप ख़राब होने लगती है या फिर उसका फिजिकल डिटोरिएशन होने लगता है। उसके बाद जो अगली कॉज है वो है ऑब्सोलेसेंस है। तो हम देखते हैं कि कई बार इम्प्रूव्ड या फिर सुपीरियर इक्विपमेंट हमारे पास आ जाते हैं, जैसा कि पहले हम जो है टाइपराइटर्स का यूज़ किया करते थे, फिर जब कंप्यूटर्स आ गए तो अपने आप टाइपराइटर्स का यूज़ होना बंद हो गया। तो इस तरह से जब भी कभी डेवलपमेंट होता है और हमारे पास सुपीरियर इक्विपमेंट आ जाता है, तो पहले वाले का यूज़ अपने आप वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑब्सोलीट हो जाता है। तो इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स को कई बार टाइम से पहले भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। अभी एक्चुअली वो वॉर्न आउट नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी वो ठीक हैं, काम हम उनसे और ले सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि एक सुपीरियर इक्विपमेंट आ जाता है या कोई नई मशीन आ जाती है, जिससे जो है हम ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और कॉस्ट भी हमारी कम लगती है, तो ये इससे जो ओल्डर इक्विपमेंट्स होते हैं वो अपने आप यूज़लेस हो जाते हैं या फिर उनकी वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि उनसे अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो कॉस्टली रहेगा और जो है वो मार्केट में उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। इसी तरह से जैसा हमने कंप्यूटर और टाइपराइटर का एग्जांपल लिया, इसी तरह से स्टीम इंजन्स भी जो हैं अपने आप ऑब्सोलीट हो गई थी जब डीजल इंजन्स और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो हैं वो आई। इसी के अलावा जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कई बार फैशन चेंज होने से या फिर लोगों का जो टेस्ट होता है, प्रेफरेंसेस होता है, वो बदल जाने से या फिर कुछ मार्केट कंडीशंस बदल जाने से भी ऐसा होता है। तो ऑब्सोलेसेंस जो है इस वजह से भी हो सकती है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई हो, क्योंकि अब उसका फैशन नहीं रहा या अब मार्केट कंडीशंस बदल गई, तो ऐसे जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो वैल्यू के एसेट अपने आप जो एसेट की जो वैल्यू होती है वो अपने आप कम हो जाती है। इसीलिए जो फैक्ट्रीज होती हैं या जो मशीन्स होती हैं जिनसे पुराने सामान वो बनाए जा रहे थे या कोई स्पेसिफिक हैट या शूज़ बनाए जा रहे थे, वो भी एब्सोल्यूट हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमने जाना कि जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है, जिन भी हमने रीजंस को डिस्कस किया उसको हम ऑब्सोलेसेंस कहते हैं और इनको हम एज डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो अब हमने ये जाना कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन की कॉजेस क्या होती हैं, कि मतलब कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है। इसके बाद ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के पीछे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो है, यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉडली आइडेंटिफाई किए हैं जिन वजह से हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि हम जो बिजनेस है उसकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो दिखाना चाहते हैं। तो फिक्स्ड असेट्स जो हैं उनकी जो इफ़ेक्टिव वर्किंग लाइफ होती है जिसमें वो इकोनॉमिकली ऑपरेट करते हैं, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन को अगर हम देखें तो वो है क्या, एक ग्रेजुअल लॉस है वैल्यू ऑफ जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में ग्रेजुअल लॉस है। अगर डेप्रिसिएशन हम नहीं दिखाएंगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो जो ट्रू प्रॉफिट है जो उस अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है उसको जो है डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसको नहीं बताएगा। और सेम टाइम पे जो हमारी बैलेंस शीट है वो भी फिर ट्रू जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है फिक्स्ड एसेट्स की वो भी नहीं दिखाएगी, या उससे बैलेंस शीट हम कह सकते हैं कि हमारी ओवर वैल्यूड रहेगी। तो अगर हम डिप्रिसिएशन को ईयर आफ्टर ईयर नहीं चार्ज करते हैं या फिर हम उसको इग्नोर करते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है, जब एसेट वॉर्न आउट होता है तो प्रोप्राइटर जो है उस पोजीशन में नहीं रह पाता कि वो बिजनेस को कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यू कर पाए ऑपरेट करने के लिए, स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बिजनेस की जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है उसको दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करें। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, वो है कि फंड्स को रिटेन किया जाए बिजनेस में ताकि कि असेट को रिप्लेस किया जा सके। तो जो डेप्रिसिएशन है अगर हम उसे प्रोवाइड करते हैं तो ये जो फिगर होती है जो हमारी नेट प्रॉफिट की होती है ये रिड्यूस हो जाती है, और जो अमाउंट प्रोपराइटर विड्रॉ करता है वो भी कम हो जाता है। तो होता क्या है कि जो कैश इक्विवेलेंट होता है डेप्रिसिएशन का वो भी बिजनेस के पास रह जाता है। तो ये जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है इससे जो है प्रोपराइटर नया एसेट खरीद सकता है। इसके अलावा अगर हमने जाना कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हैं, कि सबसे पहला तो ये है कि हम क्यों हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो जब हमने जाना कि हम बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शा सकें इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और दूसरा कि हम फंड्स को रिटेन कर पाएँ बिजनेस में ताकि कि उससे एसेट को हम रिप्लेस कर पाएँ इसलिए भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फिर जो नेक्स्ट हम जिस पर डिस्कशन करेंगे वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसकी हम बात करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो होता क्या है, वो परचेज प्राइस होता है एसेट का, जिसमें सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्लूड रहते हैं। जब जब हम एसेट को यूज़ करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हमने उस पे इनकर किए हैं वो उसमें रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो गुड्स की लोडिंग में हम खर्च करते हैं, कैरेज पे करते हैं, इंस्टॉलेशन पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं, अनलोडिंग पे करते हैं, तो यही सब जो खर्चे होते हैं ये भी कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड रहते हैं। ये खाली परचेज प्राइस ही नहीं होता है कि जितने में हमने खरीदा, उसके अलावा जो हम उस पर ऊपरी खर्चा और भी करते हैं वो भी सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। उसके अलावा यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट की अगर हम बात करें तो यूज़फुल लाइफ जो है वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जिसमें कि हमें लगता है कि एसेट जो है उसको हम यूज़ करेंगे, एसेट यूज़ में रहेगा। जैसे कि अभी हमने चेयर का जब एग्जांपल लिया था तो हमने उसमें यूज़फुल एसेट 10 साल मानी थी। तो इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट यूज़फुल लाइफ एस्टिमेट की जा सकती है। उसके बाद जो स्क्रैप वैल्यू होती है, तो स्क्रैप वैल्यू का जो है वो एक रेजिडुअल वैल्यू होती है जिसपे कि हम एसेट को बेचते हैं जबकि उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई फ्रिज होता है, जब हम उसको पूरा यूज़ कर लेते हैं और अब हमें पता चल जाता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो अब हम इसको और यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसको एक स्क्रैप डीलर को बेच देते हैं, तो वो एक स्क्रैप वैल्यू हमें देते हैं। तो इसी तरह से जो हम ये एसेट्स की भी बात कर रहे हैं, तो जब हम स्क्रैप डीलर को इस जो वैल्यू पे हमें लगता है कि इस अपनी यूज़फुल लाइफ के बाद ये जाएगी उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये है एसेट की जो कॉस्ट है उसमें से जब हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं तो जो है वो जो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो डेप्रिशिएबल वैल्यू होती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में भी समझेंगे कि जैसे कि एक जनरेटर परचेज किया गया 5 लाख रुपए का और 1,500 रुपए जो है क्रेन को दिए गए और लोडिंग के लिए ट्रक पे, उसके बाद 7,000 रुपये ट्रांसपोर्ट करने के लिए पे किए गए जनरेटर को फैक्ट्री तक लाने के लिए। उसके बाद 2,000 रुपये उसकी अनलोडिंग पे खर्च हुए जो कि फैक्ट्री साइट पे था। उसके बाद जनरेटर की जो एस्टिमेटेड लाइफ थी वो अज्यूम किया गया कि ये 10 ईयर्स होगी, और उसके बाद उसको उसको जो है सेल किया जाएगा 60,000 रुपये पे। अब हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ द जनरेटर। तो सबसे पहले तो हम उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। जब हमने कहा कि टोटल कॉस्ट खाली परचेजिंग, जिस कॉस्ट पे हमने परचेज किया वो ही नहीं होगी, उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होंगे लोडिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और अनलोडिंग पे वो भी होंगे। तो इसलिए जो यूज़फुल लाइफ होगी जनरेटर को वुड की वो 10 ईयर्स होगी। जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो 60,000 होगी, और जो डेप्रिशिएबल वैल्यू, तो जब सबसे पहले जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो परचेज प्राइस हमने बताया था कि 5 लाख रुपए है, उस पर जो एक्सपेंसेस ऑन लोडिंग थे 1,500, ट्रांसपोर्टेशन के 7,000, और 2,000 जो अनलोडिंग के थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 1,500 और 7,000 और 2,000 जो कि हो गए हमारे 10,500, और 5 लाख जो कॉस्ट थी जब उसमें हमने ऐड करेंगे तो 5,10,500 हो जाएंगे। उसके बाद हमें यूज़फुल लाइफ पता है कि 10 साल की है, स्क्रैप वैल्यू हमें पता है कि 60,000 की है। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू जनरेटर की हो जाएगी जो टोटल कॉस्ट है, और उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे। तो मतलब 5,10,500 में से हम 60,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 4,50,500 रुपये बचेंगे। अब ये जो 4,50,500 रुपये हैं इसको हम डेप्रिशिएबल, ये हमारी जो है डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है ये बच गई है। इसके बाद हम जानेंगे कि डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए। तो जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, हम यहाँ पे मुख्यतः दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एक तो है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और दूसरा है रिटन डाउन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या हो है हम उसके बारे में जानेंगे। तो इस मेथड के अंतर्गत होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो साल दर साल जो है यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर एक एसेट की कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना है 10%, यानी कि हर साल जो है 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन जो है वो हम अमाउंट जो है 10,000 रुपये हम राइट ऑफ करेंगे हर साल। तो इसीलिए इस मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, या फिर हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड में होता क्या है, अमाउंट जो है उसको हम हर साल राइट ऑफ करते हैं इस तरह से कि जो डिप्रिसिएशन है हर साल का, उसमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन हर साल का निकालने के लिए जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उसमें से हम एस्टिमेटेड जो स्क्रैप वैल्यू है उसको हम माइनस कर देते हैं और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ से डिवाइड करते हैं। तो जो टोटल लाइफ होती है, जो टोटल कॉस्ट होती है एसेट की, उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है डिडक्ट हो जाती है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ से। अब एक एग्जाम्पल देखें तो एक मशीन जो है वो परचेज की गई 1,20,000 रुपये में, और एस्टिमेट किया गया कि इसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स की रहेगी। तो उसके 10 ईयर्स यूज़फुल लाइफ के बाद जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी वो 20,000 रुपये रहेगी। अब हमें इसमें 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो परचेज कॉस्ट है एसेट का जो कि 1,20,000 है, उसमें से हमने एस्टिमेट जो स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस कर दी, यानी कि हमने 1,20,000 में से 20,000 रुपये माइनस कर दिए, हमारे पास 1 लाख रुपये बचे, उसको हमने 10 से जो उसके एस्टिमेटेड ईयर्स हैं उससे डिवाइड कर दिया, और जो हमारा आंसर बचा वो 10,000 रुपये बचा। तो अगर जो स्क्रैप है वो नहीं सेल हो पाया और मनी नहीं रियलाइज हो पाया स्क्रैप से, तो डेप्रिसिएशन तब क्या होता, क्योंकि अब अगर स्क्रैप नहीं होगा तो वैल्यू 1,20,000 थी तो उतनी ही रहेगी, उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू नहीं माइनस करेंगे, और अब हम इसको 1,20,000 जो रुपए थे इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसी को हमें 10 साल में बांटना होगा। तो 1,20,000 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 रुपये जो है हमारे डेप्रिसिएशन हर साल हमको एज डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना होगा। तो क्योंकि इस मेथड में हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल सेम रहता है, इसलिए इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम मेरिट्स की बात करें कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, तो सबसे पहला तो सिंप्लिसिटी। तो जो हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं इस मेथड के अंतर्गत, वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, और इसीलिए ये मेथड जो है ये बहुत पॉपुलर भी है। एक बार डेप्रिसिएशन की अमाउंट अगर आपने कैलकुलेट कर ली, तो आपको बार बार वो अमाउंट निकालने का ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम अमाउंट को ही हम राइट ऑफ करेंगे एज डेप्रिसिएशन हर साल। इसीलिए ये मेथड जो है बहुत सिंपल होता है, और जो कैलकुलेशंस होती हैं वो समझने में बहुत आसान होती हैं। उसके बाद एसेट जो है कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया जाता है इसमें, क्योंकि इस मेथड में होता क्या है कि जो बुक वैल्यू होती है वो एसेट की, उसको जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर देते हैं, या उसमें से आपने अभी पहले एग्जांपल में भी देखा कि उसको उसकी स्क्रैप वैल्यू से रिड्यूस कर देते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उसमें जो नेट वैल्यू है एसेट की एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ जो है, जो अपनी जितनी भी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है, उसके बाद में ज़ीरो या फिर रेजिडुअल वैल्यू के बराबर हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एसेट जो है वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाता है। फिर इस मेथड के जो लिमिटेशंस हैं, जो इसमें कमियां हैं, वो भी हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो इसको माना गया है कि इसका कंप्यूटेशन डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट माना गया है? क्योंकि बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिनके डिफरेंट लाइफ स्पैन्स हैं, और डेप्रिसिएशन को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक मशीन में अलग होता है और हर एक असेट के लिए अलग अलग हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरा एक पॉइंट और भी है कि इस मेथड को कहीं ना कहीं इलॉजिकल भी माना गया है, क्योंकि माना गया है कि जो एक्सपेंस होता है रिपेयर्स और मेंटेनेंस पे, वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे असेट जो है वो ओल्डर होता जाता है, पुराना होता जाता है। तो जो टोटल बर्डन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, वो डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर एक्सपेंसेस का होता है, वो जो बाद के साल होते हैं उनमें ज़्यादा होता है अगर हम पहले के सालों से कंपेयर करें तो उसको। इसलिए ये इलॉजिकल माना गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम किसी एसेट को नया खरीदेंगे तो जब वो नया होगा तो उसके हम रिपेयर्स में या उसकी मेंटेनेंस पे इतना खर्चा नहीं करेंगे। पहले पहले हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस पे हम उतना खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल निकलते जाते हैं, हमारा एसेट पुराना होता जाता है, तो हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो जब बाद के सालों में हम खर्च ज़्यादा करते हैं तो ये इलॉजिकल हुआ कि हम डेप्रिसिएशन क्यों हर समय सेम चार्ज करते हैं। तो क्योंकि जो एसेट की एफिशिएंसी है या जो प्रोडक्टिविटी है वो भी जो पहले के साल हैं उनमें ज़्यादा रहती है और जो बाद के साल हैं उनमें कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो एक मशीन परचेज की गई 1 लाख रुपए की, जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 10 ईयर्स थी, और उसके ये एस्टिमेट भी किया गया कि जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है जो एस्टिमेटेड लाइफ के बाद 10 साल की लाइफ के बाद वो 10,000 रह जाएगी। तो अब हमें इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे हर साल। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें जो है अपना ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन में से हम उसकी जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ मशीन जो है हमारी 1 लाख रुपए है, और उसमें से अगर हम एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे तो 1 लाख में से 10,000 रुपये हम माइनस कर देंगे, हमारे पास 90,000 रुपये बचेंगे, और उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मतलब हमारा जो 9,000 रुपये अमाउंट आएगा, और ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। इसी के साथ साथ अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो, तो क्योंकि हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट 9,000 का आया है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 9,000 को 1 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 9% आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ में कि किस तरह से हम एनुअल कॉस्ट ऑफ मशीन अगर हमें पता हो, उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू पता हो, और जो एसेट है उसकी हमें एस्टिमेटेड लाइफ अगर पता हो, ये तीन चीज़ पता होने से हम एनुअल डेप्रिसिएशन में निकाल सकते हैं, और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो हर साल हमें चार्ज करना है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे बात करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, डिमिनिशिंग मतलब कम होता हुआ, तो इस मेथड में जो है जो वैल्यू ऑफ एसेट होती है वो डिमिनिश करती जाती है या फिर कम होती जाती है साल दर साल। जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं हर साल वो कम होता जाता है। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो जो कैलकुलेट किया जाता है वो एज परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। जो भी डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ असेट है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई गई है साल के शुरुआत में, उस पे एज परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। और अगर हम इस मेथड की बात करें तो जैसे उसमें हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में होता था कि जो एसेट की वैल्यू कॉस्ट होती थी वो ज़ीरो हो जाती थी, बट इस मेथड में वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। तो अब हम एक एग्जांपल से देख लें पहले तो, कि एक मशीन जो है उसको परचेज किया गया 1 लाख रुपये में, और उसकी जो यूज़फुल लाइफ है उसको 10 साल माना गया, और जो अपनी यूज़फुल लाइफ कंप्लीट करने के बाद जो एसेट की स्क्रैप वैल्यू रहेगी वो 4,000 रुपये रहेगी, जो उससे पैसा हम रियलाइज कर सकते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस मशीन पे वो 10% पर एनम होगा और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे होगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो हम 1 लाख पे 10% कैलकुलेट करेंगे। तो 1 लाख पे जब 10% हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले साल में हम देखते हैं कि हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 रुपये आया। लेकिन अगले साल में हम क्या करेंगे कि 10,000 रुपये अब हमने क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है तो उसको हम 1 लाख रुपये में से माइनस कर देंगे। तो जब हम उसको 1 लाख रुपये में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बाकी 90,000 रुपये बचते हैं, और अब हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिर इस 90,000 रुपये पे हम 10% चार्ज करेंगे, इसलिए हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 9,000 रुपये हो जाता है। तो अगली बार अब हम क्या करते हैं कि ये 9,000 रुपये 90,000 जो हमारी इससे पहले कॉस्ट हमने निकाली थी कि 90,000 में से अब जो 9,000 इस बार का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आया वो हम कम कर देते हैं। तो इसलिए अब हमारी कॉस्ट जो है इस साल के लिए हो जाती है 81,000। तो 81,000 पे हम इस बार अब 10% चार्ज करेंगे। तो अब 10% जब हम 81,000 पे चार्ज करते हैं तो हमारा 8,100 रुपये आता है जो डेप्रिसिएशन है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है, क्योंकि हम जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आती है उसको हम कॉस्ट में से माइनस करते जा रहे हैं। तो पहले साल में हमारा डेप्रिसिएशन 10,000 था, अगले साल में हमारा डेप्रिसिएशन 9,000 हो जाता है क्योंकि हम 90,000 पे कैलकुलेट करते हैं बचे हुए अमाउंट पे। उसके बाद अगले साल पे जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 8,100 हो जाता है क्योंकि हम 81,000 पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको 10%। इसी तरह से जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 8,100 के बाद 7,290, 6,561 और ऐसे आता जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे। तो अब इस मेथड में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो साल दर साल कम होता जा रहा है। इसीलिए जो ये मेथड है इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, या फिर हम इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम मेरिट्स की बात करें कि इस जो मेथड है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो सबसे पहला तो ये कि जो प्रोडक्टिविटी होती है एसेट की वो ज़्यादा होती है शुरुआती सालों में, तो इसीलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट में वो भी शुरुआती सालों में ज़्यादा होता है। इसीलिए जो कॉस्ट चार्ज होती है डेप्रिसिएशन में वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि हम इस केस में देख रहे हैं कि हो रही है, कि पहले साल हमने 10,000 किया और नीचे आते आते 10 साल के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 3,874 रुपये बचते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहले के सालों में हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और 10वें साल में हम 3,800 लगभग रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सही है, क्योंकि जब हम जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि शुरुआती सालों में जब प्रोडक्ट की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है उस पर वो काम ज़्यादा करता है, तो तो कॉस्ट भी जो है ज़्यादा हम चार्ज कर सकते हैं। तो इनिशियल ईयर्स में इसमें हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और रिपेयर एक्सपेंसेस जो हैं वो कम होते हैं, लेकिन लेटर ईयर्स में अगर हम देखें तो जो डेप्रिसिएशन चार्जेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो रिपेयर एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो टोटल बर्डन है डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर एक्सपेंसेस का वो कहीं ना कहीं बराबर रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हर साल। तो इसलिए ये मेथड जो चार्जिंग डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का है ये इसका ज़्यादा इसको सही समझा जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी डिमेरिट्स देखें कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या खामियां हैं, तो सबसे पहला तो कि इसमें एसेट जो है वो कम्प्लीटली राइट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जैसे पहले भी बात करी कि जो वैल्यू ऑफ एसेट है उसको हम पूरी तरह से ज़ीरो पे रिड्यूस नहीं कर पाते, चाहे उसकी कोई भी स्क्रैप वैल्यू ना हो। दूसरा ये है कि ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो सेम नहीं रहता है और हर बार जो है हमें अलग रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है उसको चार्ज करना पड़ता है। तो ये इसको भी हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे, हालांकि एक हमने छोटा एग्जांपल लिया था यहाँ पे। उसके बाद में सबसे पहले हम इसमें ये जान लें कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि हम बात करें स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन की या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन जो बेसिस जो होता है कैलकुलेशन का वो अलग है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड की हम बात करें तो जो डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं, असेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पे करते हैं। लेकिन अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस की बात करें तो इसमें जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं और रिटन डाउन वैल्यू जो एसेट की होती है बाकी के सालों पे हम उसमें करते हैं, जो हमारी रिटन डाउन वैल्यू आती जाती है। उसके बाद अगर हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल सेम रहता है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो साल दर साल कम होता जाता है। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें जो वैल्यू ऑफ एसेट है, तो जो बुक वैल्यू है एसेट की, वो ज़ीरो तक रिड्यूस की जा सकती है। लेकिन जो अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस की बात करें तो उसमें जो बुक वैल्यू है एसेट की उसको हम कभी भी ज़ीरो पे रिड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स की बात करें तो जो कंबाइंड कॉस्ट होती है डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स की वो शुरुआती सालों में कम होती है और जो बाद के साल होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करें तो जो कंबाइंड कॉस्ट होती है डेप्रिसिएशन की और रिपेयर्स की वो मोर और लेस थ्रू आउट द पीरियड सेम रहती है, क्योंकि ये क्यों सेम रहती है इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं।